एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम चीन चल रहे हैं और बात करेंगे एक ऐसे उपन्यास की जिसने न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर के साहित्य पर गहरी छाप छोड़ी है।
जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोयान के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास लाल जुवार यानी रेड सॉर्गम की।
मोयान नाम सुनते ही 2012 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद आता है।
बिल्कुल, और उनका असली नाम ग्वान मोए है, पर उन्होंने अपना साहित्यिक नाम चुना मोयान, जिसका मतलब है बोलो मत। कितना विरोधाभासी लगता है ना? एक लेखक जिसका काम ही बोलना है, वो कहता है बोलो मत।
हाँ, ये दिलचस्प है। उनका जन्म 1955 में शानदोंग प्रांत के गाओमी काउंटी में हुआ और कहते हैं कि उनका लेखन उनकी मिट्टी से, वहीं की कहानियों से, वहीं के इतिहास से गहराई से जुड़ा है।
एकदम सही। उनकी जमीन उनके उपन्यासों में सांस लेती है, और उनकी शैली उसे मति भ्रम यथार्थवाद या हेलुसिनेटरी रियलिज्म कहा जाता है।
मति भ्रम यथार्थवाद सुनने में ही कितना आकर्षक लगता है। मतलब यथार्थ भी और मति भ्रम भी।
हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब सामाजिक यथार्थ, इतिहास की पुनर्कल्पना और साथ में लोक कथाएं, मिथक, इन सब का एक ऐसा मिश्रण कि पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हो, पर वो सपना असलियत से जुड़ा है, जैसे मार्केज या फॉकनर की दुनिया होती है।
अच्छा, और लाल ज्वार तो 1986 में आया था, है ना, पांच कहानियों के संग्रह के रूप में।
जी हाँ, पांच जुड़ी हुई कहानियां जो मिलकर एक उपन्यास बन गईं, और इसी ने मोयान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। ये चीन के उस जड़ों की तलाश वाले साहित्यिक आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था।
जड़ों की तलाश, मतलब लेखक अपनी संस्कृति, अपनी लोक कथाओं की ओर लौट रहे थे।
बिल्कुल, माओ युग के समाजवादी यथार्थवाद के जो तयशुदा फ्रेम थे, उनसे बाहर निकलकर अपनी जमीनी हकीकतों को, अपने इतिहास को अपनी तरह से कहने की कोशिश कर रहे थे।
और ये उपन्यास किस दौर की कहानी कहता है?
ये हमें ले जाता है 1920 से 1940 के दशक के चीन में। वो बड़ा उथल पुथल का समय था। सरदार आपस में लड़ रहे थे, फिर दूसरा चीन जापान युद्ध हुआ, उसकी भयानक क्रूरता, और फिर गृह युद्ध, मतलब लगातार अशांति और हिंसा का दौर।
ऐसे मुश्किल वक्त की कहानी कहना, और वो भी पारंपरिक तरीके से नहीं, जैसा आपने बताया।
हाँ, यही मोयान की खासियत है। उन्होंने कोई सीधा सपाट आदर्शवादी इतिहास नहीं लिखा, बल्कि अतीत का एक बहुत ही, कह सकते हैं, कच्चा, अराजक, कई बार विभत्स और नैतिक रूप से धुंधला सा चित्र खींचा है। इसमें कोई हीरो या विलेन आसानी से नहीं मिलते।
और इसने चीनी उपन्यास की संभावनाओं को ही बदल दिया।
हाँ,
फिर इस पर झांग यामाओ ने 1988 में फिल्म भी बनाई जो काफी मशहूर हुई।
हाँ, उस फिल्म ने भी बहुत ध्यान खींचा। तो आज हम इसी महागाथा में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। इसकी कहानी क्या है, इसके पात्र कैसे हैं, कौन से मुख्य विषय हैं, और मोयान का लिखने का अंदाज कैसा है, इन सब पर बात करेंगे।
ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? आपने कहा ये रैकेट नहीं है।
हाँ, कहानी सुना रहा है एक अनाम पोता। वो अपने परिवार, खासकर अपने दादा दादी के इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों को, सुनी सुनाई बातों, यादों, मिथकों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, तो ये स्मृति की तरह है जो कभी कहीं से शुरू होती है, कभी कहीं और पहुंच जाती है।
बिल्कुल, और कहानी का जो मूल सिरा है वो जुड़ता है दादी दाई फेंगलियान से, एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की जिसे उसके घर वाले पैसे के लिए एक अमीर लेकिन कोड़ी शराब बनाने वाले शान बियान लंग से शादी करने के लिए लगभग बेच देते हैं।
ओह, मतलब एक तरह से उसकी जिंदगी का सौदा हो गया।
हाँ, और यहीं कहानी में एंट्री होती है दादा यूझानाओ की। वो एक हट्टा कट्टा जोशीला कुली है जो दाई फेंगलियान को शादी की पालकी में ले जाने वाले लोगों में शामिल है।
अच्छा,
रास्ते में पालकी पर डाकुओं का हमला होता है और यूझानाओ बड़ी बहादुरी से लड़ता है। यहीं पर दादी और दादा के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन बन जाता है, एक नज़र का रिश्ता।
खतरे में पनपा आकर्षण।
हाँ, कह सकते हैं। फिर शादी के कुछ ही दिन बाद एक बहुत ही नाटकीय और, कह सकते हैं, विद्रोही घटना होती है।
क्या?
यू जानाओ यानी दादा दाई फेंगलियान को उन अंतहीन फैले लाल ज्वार के खेतों में ले जाता है, और वहीं समाज के सारे बंधन तोड़कर उनके बीच प्रेम संबंध बनता है।
ज्वार के खेतों में? ये तो बहुत सिंबॉलिक है।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं है, ये समाज के नियमों के खिलाफ एक खुली चुनौती है, और इसी संबंध से जन्म होता है कथावाचक के पिता डांगवान का।
तो ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि विद्रोह की भी है।
हाँ, और सत्ता की भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद दादी के वो कोढ़ी पति और ससुर दोनों के रहस्यमयी मौत हो जाती है।
रहस्यमयी? हाँ, इसमें दादा का हाथ था।
उपन्यास बहुत साफ इशारा करता है कि हाँ, शायद दादा का ही हाथ था, तो नैतिकता का सवाल शुरू से ही साथ चलता है।
और फिर दादी का क्या होता है विधवा होने के बाद?
यहीं दाई फेंगलियान का असली रूप सामने आता है। वो टूटती नहीं, बल्कि शान परिवार की जो जुआर की शराब की भट्टी थी उसे अपने हाथ में ले लेती है।
कमाल है, एक औरत उस जमाने में कारोबार संभाल लेती है।
हाँ, और सिर्फ संभालती नहीं, अपनी सूझबूझ से शराब का नुस्खा और बेहतर बनाती है। वो शराब पूरे इलाके में मशहूर हो जाती है। वो एक बेबस दुल्हन से एक ताकतवर बिजनेस वूमेन बन जाती हैं।
और दादा यू जहां आओ,
वो भी पीछे नहीं रहते, वो एक खाकार ताकतवर स्थानीय डाकू सरदार बन जाते हैं। तो दोनों की जिंदगियां समानांतर चलती हैं, दोनों अपने अपने तरीके से पावरफुल बनते हैं, और उनका जो रिश्ता है वो छिपा हुआ है, पर वही उनकी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स है।
ये तो बड़े दिलचस्प किरदार हैं। थोड़ा और बात करते हैं इन पर। दादी, दाई फेंगलियान, आपने कहा वो उपन्यास की धड़कन है।
वाकई उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बेबस जड़ की जिसे वस्तु की तरह बेचा गया, वहां से एक स्वतंत्र शक्तिशाली महिला जो अपना कारोबार चलाती है, और फिर जब जापानी हमला होता है तो वो प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती हैं।
ये पारंपरिक चीनी समाज में औरत की जो छवि थी उसे पूरी तरह तोड़ देता है।
बिल्कुल, वो अपनी शर्तों पर जीती है, अपने फैसले खुद करती है। ये अपने आप में एक क्रांति है उस दौर के हिसाब से।
और दादा यू जहानाओ, वो कैसे हैं? डाकू, बहादुर कुली, प्रेमी, कई रूप हैं उनके।
वो जैसे मिट्टी की ताकत का प्रतीक है। उनमें गजब की शारीरिक ऊर्जा है, पौरुष है, लेकिन वो नैतिक रूप से बिल्कुल साफ सुथरे नहीं है।
मतलब
वो आवेगी हैं, हिंसक हैं, डाकू हैं, लेकिन जब जापानी हमला होता है तो यही जंगली ताकत जैसे एक दिशा पाती है। वो एक जबरदस्त गुरिल्ला कमांडर बन जाता है जो दुश्मन से उसी की भाषा में लड़ता है।
तो क्या उपन्यास ये कह रहा है कि ऐसे बर्बर समय में रक्षक बनने के लिए भी क्रूर होना पड़ता है?
हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। वो कोई आदर्श हीरो नहीं है, वो उसी हिंसक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन उनकी ऊर्जा आखिर में समुदाय की रक्षा में लगती है। ये जटिलता ही उन्हें यादगार बनाती है।
और फिर पिता हैं डोगवान, कथावाचक के पिता।
जी, वो जैसे अपने माँ बाप की उस तूफानी विरासत के बोझ तले दबे हैं, वो अतीत के मिथक और वर्तमान की सच्चाई के बीच एक पुल की तरह हैं।
उन्होंने सब कुछ देखा है, वो जुनून, वो हिंसा।
हाँ, वो गवाह हैं, एक उत्तरजीवी जो अपने माँ बाप की उस लगभग मिथकीय कहानी के साए में अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
एक और किरदार का आपने जिक्र किया था, चाचा अरहट।
आहा, चाचा अरहट, वो शराब की भट्टी में काम करने वाले एक बहुत वफादार, सीधे साधे, नेक इंसान है। दादी और पिता के लिए पूरी तरह समर्पित। वो जैसे निर्दोषिता का प्रतीक है।
लेकिन उनका अंत बहुत दुखद होता है ना?
बेहद दुखद और भयावह। जापानी सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और गांव वालों में डर फैलाने के लिए उनकी जिंदा खाल उतार देते हैं।
हे भगवान।
ये तो
हाँ, ये उपन्यास के सबसे विचलित करने वाले हिस्सों में से है। ये युद्ध की किसी भी रोमांटिक या वीर छवि को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये दिखाता है कि क्रूरता किस हद तक जा सकती है।
और यही घटना कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। बिल्कुल, अब तक जो दुनिया आपसी झगड़ों, डाकुओं और शराब बनाने वालों की थी, उस पर एक बाहरी, बहुत बड़ा और वहशी दुश्मन आ गया है। जापानी सेना का आक्रमण सब कुछ बदल देता है।
उनकी क्रूरता का सामना पूरा समुदाय करता है।
हाँ, वो खेत जलाते हैं, लूटते हैं, आतंक फैलाते हैं। चाचा अरहट की मौत उस आतंक का चरम थी, और यही वो घटना है जो पूरे समुदाय को सारे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट कर देती है।
और यू जहानाओ का गिरोह,
वो अब सिर्फ डाकू नहीं रहते, वो एक संगठित गुरिल्ला सेना बन जाते हैं। उनका मकसद अब जापानियों से बदला लेना और अपनी जमीन की रक्षा करना है। अरहट की मौत ने उन्हें जैसे एक नैतिक बल दे दिया है, भले ही उनके तरीके अब भी हिंसक हों।
और यहीं से उपन्यास अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता है, वो घात लगाने वाली घटना।
जी, यू जहानाओ जापानी सेना के एक बड़े काफले पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाता है, बदला लेने के लिए। और इस लड़ाई में दादी दाई फेंगलियान की भूमिका भी निर्णायक हो जाती है।
वो क्या करती हैं?
वो सिर्फ भट्टी नहीं संभालती, वो खुद आगे आती हैं, लड़ने वालों के लिए खाना बनाती हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे लड़ाई के मैदान तक पहुंचाने जाती हैं।
वो भी लड़ाई का हिस्सा बन जाती हैं।
हाँ, और फिर वो पल आता है जब वो बैलगाड़ियों पर खाना लेकर उन्हीं लाल ज्वार के खेतों से गुजर रही होती हैं, वो खेत जो उनके प्यार, उनकी बगावत, उनकी जिंदगी का प्रतीक हैं। तभी जापानी सिपाही उन्हें देख लेते हैं।
और
गोलीबारी शुरू हो जाती है और दुश्मन की एक गोली दादी को लग जाती है। उनकी वही मौत हो जाती है उन्हीं लाल ज्वार के खेतों में। ये उपन्यास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन शायद सबसे वीर क्षण भी। वो उसी जमीन पर शहीद होती हैं जिसे उन्होंने सींचा था, और अब अपने खून से सींच देती हैं।
उनकी शहादत, इसके बाद क्या होता है?
उगात सफल होता है, जापानियों को भारी नुकसान होता है, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी है। दादा यूजा नाओ को दादी का शव मिलता है और ये दुख उन्हें जिंदगी भर घेरे रहता है।
और फिर युद्ध खत्म होता है, गृह युद्ध शुरू होता है।
हाँ, जापान के खिलाफ लड़ाई की जो एक स्पष्टता थी वो खत्म हो जाती है। चीनी गृह युद्ध की हिंसा ज्यादा जटिल और दुखद है। भाई ही भाई का दुश्मन है।
तो दादा का क्या होता है आखिर में?
वो युद्ध के बाद भी जिंदा रहते हैं, लेकिन एक बूढ़े अकेले आदमी के तौर पर, जैसे उस पुराने, ज्यादा जंगली, ज्यादा जोशीले युग के एक जिंदा निशान। और कथावाचक उनका पोता इन्हीं सब कहानियों, यादों, दर्द और मिथकों को समेटकर अपने अतीत को समझने की कोशिश करता रहता है।
कहानी जितनी दमदार है, मो यान का उसे कहने का तरीका भी उतना ही खास है, जैसे वो समय में आगे पीछे जाना।
हाँ, वो गैर रैखिक संरचना वो कहानी को बहुत ऑर्गेनिक बनाती है, जैसे हम सच में किसी की यादों को सुन रहे हों। कभी कोई घटना याद आती है, कभी कोई और। अतीत मरावा नहीं लगता, बल्कि वर्तमान पर असर डालता हुआ महसूस होता है।
पाठक को खुद ही कहानी जोड़नी पड़ती है।
बिल्कुल। और वो मतिभ्रम यथार्थवाद वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं है। मुझे लगता है जब इतिहास इतना भयानक और अविश्वसनीय हो तो शायद उसे सीधे सीधे बताना काफी नहीं होता।
मतलब
मोयान मिथक और अतिशोक्ति का इस्तेमाल करके उस दौर की भयंकरता और उसमें जीने वालों की असाधारण ताकत को शायद ज्यादा गहराई से दिखा पाते हैं। पात्र एकदम असली लगते हुए भी थोड़े बड़े, थोड़े मिथकीय हो जाते हैं।
और प्रतीक, लाल ज्वार तो जैसे उपन्यास का आधार ही है।
हाँ, ज्वार वो सिर्फ फसल नहीं है, वो जिंदगी है, जुनून है, शराब है और खून भी है। उसी से जीवन चलता है, अनाज मिलता है, शराब बनती है, और उसी में मौत भी है, युद्ध है, दादी की शहादत है। वो उस धरती की आत्मा है, जंगली, जिद्दी, जीवन देने वाली।
और ज्वार की शराब,
वो जैसे उस ज्वार और उन लोगों का निचोड़ है। उत्सव में पी जाती है, हिम्मत के लिए पी जाती है, मातव में पी जाती है। वो समुदाय को जोड़ती है, वो उस इलाके की स्पिरिट है जिसे बोतल बंद कर दिया गया हो। तेज, नशीली, जिंदा दिल।
जाओमो नदी का भी जिक्र आता है।
हाँ, वो नदी जैसे समय का बहाव है, वो चुपचाप बहती रहती हैं। इंसानों के सारे नाटक, जीत हार, प्यार नफरत, सबको देखती हुई बहा ले जाती हुई। वो इतिहास की एक खामोश गवाह है।
मोयान की भाषा में गंध का भी बहुत जिक्र है, कहते हैं।
ओ हाँ, बिल्कुल। वो लिखते ऐसे हैं कि आप उस दुनिया को सूंघ सकते हैं। ज्वार की शराब की वो मीठी तीखी गंध, खून की धातु जैसी महक, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये सब मिलकर उस दुनिया को इतना असली बना देते हैं।
तो इन सब के जरिए मोयान क्या बड़े मुद्दे उठा रहे हैं? इतिहास और स्मृति की बात तो हुई।
हाँ, वो आधिकारिक इतिहास पर सवाल उठाते हैं, दिखाते हैं कि इतिहास एक नहीं, कई होते हैं, लोगों की निजी कहानियों, यादों, मिथकों से बने हुए। असली इतिहास खून और मिट्टी में लिखा जाता है।
और जीवन शक्ति का विषय, इतनी तबाही के बीच भी
वो बहुत मजबूत है। जैसे ज्वार कटने के बाद फिर उगाती है, वैसे ही इंसान भी हैं, दादी और दादा जैसे किरदार। वो भयानक परिस्थितियों में भी पूरी शिद्दत से जीते हैं, उनमें एक अदम्य ऊर्जा है।
हिंसा का चित्रण काफी ग्राफिक है, क्या ये जरूरी था?
मुझे लगता है हाँ, मोयान हिंसा को अनदेखा नहीं करते। वो उसे एक बुनियादी ताकत की तरह दिखाते हैं, विनाशकारी भी और शायद कभी कभी अस्तित्व बचाने या पहचान बनाने का जरिया भी। वो उसे महिमा मंडित नहीं करते, पर उसकी मौजूदगी को स्वीकारते हैं।
और किरदारों में वो अवज्ञा का भाव, किसी के आगे न झुकना।
हाँ, वो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। दादी समाज के नियम तोड़ती हैं, दादा कानून के बाहर अपनी सत्ता बनाते हैं, वो अपनी कहानी खुद गढ़ते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है।
और वो जमीन, गांव में की धरती,
वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है। किरदार उससे जुड़े हैं, उसी से ताकत पाते हैं और उसी में मिल जाते हैं। जमीन खुद एक किरदार की तरह है जो सब कुछ देखती है, सहती है और जीवन देती रहती है।
इस उपन्यास को पढ़ना कैसा अनुभव रहा होगा, मतलब भावनात्मक रूप से?
ये बहुत तीव्र अनुभव है, झकझोर देता है, कई बार पढ़ना मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत कच्चा और ईमानदार है। ये इंसान की अच्छाई और बुराई, प्रेम और क्रूरता दोनों को बिना किसी पर्दे के दिखाता है।
तो हिंसा का वो चित्रण पाठक को सीधे उस दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराता है।
हाँ, और तभी जब उस क्रूरता के बीच प्यार, साहस या विद्रोह के क्षण आते हैं तो वो और भी ज्यादा असरदार लगते हैं, वो खोखले नहीं लगते।
और पढ़ने के बाद सबसे गहरी छाप क्या रह जाती है?
मेरे लिए तो ये इंसान की हार न मानने वाली जिद, उसका लचीलापन, उस पर एक तरह का विस्मय है। किरदार परफेक्ट नहीं है, उनमें बहुत कमियां हैं, वो हिंसक हैं, पर उनमें अजीब सी गरिमा है, एक मिथकीय ऊंचाई है, और ये किताब वीरता, नैतिकता, सभ्यता, इन सब पर बड़े कठिन सवाल छोड़ जाती है।
हाँ, शायद ये दिखाती है कि सभ्यता की परत कितनी पतली होती है और उसके नीचे वो आदिम जीवन शक्ति हमेशा मौजूद रहती है।
बिल्कुल, तो लाल जुवार हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि मानवीय जुनून, क्रूरता और लचीलेपन की एक जीती जागती, धड़कती हुई कहानी है।
और शायद ये भी कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी प्यार और आजादी की वो इच्छा कहीं ना कहीं जिंदा रहती है और अपना रास्ता खोज ही लेती है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।
सही कहा।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।